सिटी हॉस्पिटल में अनंत बेचैनी से कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। अंदर राव्या का इलाज चल रहा था। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर बाहर आती है और अपने ग्लव्स उतारते हुए बोलती है, डोंट वरी सर, आपकी वाइफ को बस शॉक लगा है इसीलिए बेहोश हो गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी बॉडी बिल्कुल फिट है और वो एकदम हेल्दी है, आप परेशान मत होइए। अनंत पूरा पसीने से लथपथ हो चुका था, उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था इसीलिए वो डॉक्टर उसके लिए कंसर्न दिख रही थी। अनंत धीरे से कहता है, क्या आप, मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? डॉक्टर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और फिर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अनंत धीमे कदमों से कमरे के अंदर जाता है। बेड पर राव्या बैठी हुई थी और अपने हाथ की तरफ देख रही थी जिस पर ड्रिप चढ़ा रखी थी। वो बस उस ड्रिप के खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि जल्द से जल्द यहां से चली जाए। उसे फिलहाल अनंत से कोई बात नहीं करनी थी। अनंत अंदर जाकर राव्या के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है, पर क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती हो? उसके ऐसा बोलते ही राव्या की आंखों से आंसू निकलकर उसके हाथ पर गिरने लगे और अगले ही पल राव्या ने झटके से उसके हाथ से अपना हाथ अलग कर लिया और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं मिस्टर, मुझे आप पर भरोसा नहीं करना है। मैंने देखी अपनी बहन की हालत, उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है और वहां पर आपके अलावा कोई नहीं था, तो मैं क्या समझूं? अनंत मन ही मन कई उलझनों में फंस चुका था। उसने इमामी से प्रॉमिस किया था कि वो उसके हरासमेंट का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा और एक लड़की के लिए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है इसका अंदाज़ा अनंत को था। वो नहीं चाहता था कि कल को अगर ये न्यूज़ बाहर आए और उसके बाद इमामी खुद को कुछ कर ले, क्योंकि लड़कियों को बदनामी से बेहद डर लगता है। उसने फिर गहरी सांस भरते हुए कहा, देखो बीवी, मेरे पास ज़्यादा सफाई नहीं है, बस मैं तुम्हें इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो निशान मैंने नहीं दिए थे। हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ उसने नाइट स्टे किया हो, तुम मुझ पर ही क्यों शक कर रही हो? राव्या ने गुस्से में कहा, फिलहाल के लिए प्लीज आप यहां से चले जाइए, मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना है। शायद अभी गुस्से में हूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब आ जाऊंगी आपके पास, अभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अनंत का रोने का मन कर रहा था, वो कैसे अपनी बीवी को अकेला छोड़कर जा सकता है? राव्या ने फिर ड्रिप की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं कि ये शांति से पूरी खत्म हो जाए तो यहां से चले जाइए, वरना मैं इसे निकालकर अभी के अभी यहां से चली जाऊंगी, क्योंकि अपनी आंखों के सामने मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। अनंत राव्या की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, इसलिए वो हामी में सिर हिलाते हुए वहां से उठ जाता है और फिर अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए वहां से बाहर चला जाता है। उसे कॉरिडोर में ही इमामी मिल जाती है जिसने अब कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने फुल स्लीव्स की अनारकली पहन रखी थी जिसमें अब उसके शरीर के निशान नहीं दिख रहे थे। इमामी ने फिर हाथ जोड़कर अनंत को देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच जीजू, मैंने सोचा नहीं था आप इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, आपके रिश्ते पर भी बात आ गई, लेकिन इसके बावजूद आपने मेरा सच राव्या को नहीं बताया, पता नहीं मैं आपका ये एहसान कभी चुका भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन आप सच में बहुत अच्छे हैं, राव्या बहुत लकी है जो उसे आप जैसे हस्बैंड मिले हैं। अनंत ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन वो मुस्कुरा भी नहीं पाया क्योंकि उसके दिल में दर्द बहुत ज्यादा था, शायद वो उसे नकली मुस्कान भी होठों तक नहीं आने दे रहा था। अनंत एक्सक्यूज मी बोलते हुए वहां से चला जाता है, जिसके बाद इमामी होठों पर डेविल स्माइल लिए राव्या के कमरे में जाती है। राव्या जो पहले से दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए रो रही थी, उसे देखते ही इमामी के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। उसके पास जाकर आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जब मेरे जैसी लड़की सामने हो तो फिर आदमी कब तक खुद पर कंट्रोल कर सकता है, बस यही चीज जीजू के साथ हुआ, उनका कंट्रोल छूट गया और फिर हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया, पर तुम इसे एक एक्सीडेंट समझकर भूल भी सकती हो अगर तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए जीजू का साथ चाहिए, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छे लड़के हैं, वैसे भी और बेड पर भी। राव्या ने गुस्से में इमामी को धक्का देते हुए कहा, चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। इमामी कुछ कदम लड़खड़ा गई लेकिन फिर डेविल स्माइल करते हुए बोली, वैसे मैं सच बोल रही हूं ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीजू और तुम्हारे बीच अब तक कुछ हुआ ही ना हो और तुम्हें पता ना हो कि बेड पर चीजें कितनी ज्यादा अच्छी होती हैं? सच में मेरे लिए वो रात भूल पाना अब नामुमकिन है, चाहे मुझे कितने अच्छे लड़के क्यों ना मिल जाए, मैं जीजू को हमेशा याद रखूंगी। इमामी की बातें सुनकर राव्या का दिमाग फटने को तैयार हो गया था। उसने गुस्से में अपने हाथ में लगी ड्रिप निकाली और अगले ही पल इमामी के पास जाकर उसके गाल पर थप्पड़ चढ़ते हुए बोली, बेशर्म लड़की, चली जाओ यहां से, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ तुमसे शेयर नहीं करना चाहती और मुझे पता है तुम बस मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहती हो, मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। ये सुनते ही इमामी की मुट्ठियां गुस्से में कस गईं, उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। अगले ही पल वो राव्या पर हाथ उठाने वाली थी कि अचानक किसी ने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली।
पल भर में इमामी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो ये अनंत था, जिसका चेहरा अब गुस्से में अंगारों की तरह दहक रहा था। अनंत ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? मैं बहुत देर से तुमसे इज्जत से पेश आ रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी। इतना बोलकर उसने इमामी का हाथ झटक दिया, जिसके साथ ही इमामी फिर से लड़खड़ा गई। गिरने से पहले उसने दीवार पकड़ ली, तो वहीं राविया अब हैरानी से अनंत की तरफ देख रही थी। और अगले ही पल उसने अनंत की कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे स्पेस चाहिए, चले जाओ यहाँ से। अनंत ने अगले ही पल जबरदस्ती उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मुझे पता है बच्चे, तुम्हें स्पेस नहीं चाहिए, तुम्हें मेरी जरूरत है। राविया उसकी बाहों में छटपटाना कर रही थी, लेकिन अनंत की पकड़ उस पर पल भर के लिए भी ढीली नहीं हुई थी। वो उसे वैसे ही पकड़े तब तक खड़ा रहा जब तक राविया पूरी तरह टूटकर बिखर नहीं गई। उसके बाद राविया बेतहाशा रोने लगी। उसने छटपटाना बंद कर दिया था, लेकिन अब उसके दिल का दर्द बाहर आ रहा था, जिसे सुनकर अनंत की भी आंखें भर आई थी। इमामी कुछ पल वहां खड़ी उन दोनों को देखती रही और फिर धीमे कदमों से वहां से बाहर चली गई, क्योंकि उसे अब राविया के सामने अनंत से अपनी और इंसल्ट नहीं करवानी थी। ऊपर से उसने जो झूठ बोला था, अगर वो राविया अनंत को बता देगी तो उसके और अनंत के बीच जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, और वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसके जाने के बाद अनंत ने राविया को अपनी बाहों में उठाया और फिर उसे बेड पर बैठाया। वो ड्रिप को देखने लगा। उसे थोड़ा बहुत मेडिकल का नॉलेज था, इसीलिए उसने उसके हाथ में वो ड्रिप वापस लगा दी और फिर राविया के माथे पर किस करते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता मैं तुमसे कितनी बार सॉरी बोलूंगा, जिसके बाद तुम शायद मेरी गलती माफ कर दोगी, पर आइंदा से मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी होगा पूरा सच बताऊंगा। उसके बाद अनंत ने कुछ सोचते हुए कहा, और अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्यों अपनी बहन को इमामी हाउस से निकालना चाहती थी। शायद उस लड़की में कुछ तो ऐसा है, वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती है।
उसने एक बार भी तुम्हारी हेल्थ के लिए नहीं पूछा, बहुत ज्यादा मतलबी लड़की है वो। राविया का रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। वो बेड पर सिर झुकाए अनंत की बातें सुन रही थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी।